कि इंसान जाए हफ्ते में एक दो दफा, मौत की याद ताज़ा हो, उसे इबरत मिले, मुतज़क्किर हो, जागा रहे, हदफ उसका हमेशा उसके सामने जो उसको नज़र आ रहा हो, गफलत का शिकार ना हो। और जिन चीज़ों को इस्लाम ने कहा है नहीं होना चाहिए वो हम आजकल कर रहे हैं, और जो इस्लाम चाह रहा है हो वो हम नहीं करते, जबकि इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है कि कब्रिस्तान शहर के मरकज़ में हो। और जैसे बर्थडेज वगैरह हैं या रोज़े विलादत जो मनाई जाती है, ये इसकी इस कदर इनक्रेजमेंट हमें इस्लाम में नहीं आती जिस अंदाज से हम मनाते हैं। इंशाल्लाह कभी इस पर और तफसील से गुफ्तगू होगी। फिर उम्मुल बनीन बता रही हैं कि मेरे बेटे की शहादत में शुजाअत पिनहान है। मेरा बेटा अगर शहीद भी हुआ है ना, तो ये ना समझो कि दुश्मन को कोई कामयाबी मिल गई है, दुश्मन थोड़ा सा गालिब आ गया था। नहीं, वो अपने बेटे को अपने अशआर में शेर से तशबीह दे रही है, और कुफ्र के लश्कर को भेड़ बकरियों की तरह कमज़ोर, और कह रही है मेरे बेटे अली के बेटे हैं जो इल्म, कुदरत, शुजाअत, मकसद और अबदी सफ़र करने के लिए आमादा, और इन तमाम फजाइल से सरतपा लबरेज हैं, जबकि दुश्मन का लश्कर जहल, कमज़ोरी, ज़ाफ, पस्ती, जुल्मत से दरकार है। ये अल्फाज और ये पैगाम रसानी क्या कम है? क्या हम इस अंदाज से हमारे हत्ता जो मरसिया खान है, नोहा खान है, या जो हमारे लोग जिनको खुदा तौफीक देता है मजलिस से पढ़ने की, या कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में कहीं कुछ बयान करने की, क्या हम इस अंदाज से अपने किसी अशआर के ज़रिए लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं? यानी हम में से हर एक में ये क्वालिटी नहीं, बेशक हमारे बहुत से ऐसे अजीम शायर और बहुत से अजीम ऐसे ज़ाकरीन हैं जो कि इस अंदाज़ से कोशिश कर रहे हैं इस सीरत पर चलने की। एक और चीज़ जो उम्मुल बनीन कह रही है कि मेरे बेटे को जो शहादत मिली है वो शहादत इस अंदाज से मिली है कि उस शहादत ने भी बताया कि दुश्मन बिलाखरा शिकस्त खाकर आखिर में धोखा और फरेब देकर उसने मेरे बेटे को मारा। क्यों? क्योंकि उम्मुल बनीन ने कहा कि अगर मेरे अब्बास के बाजू न कटते तो कोई उसके करीब ना आ सकता, क्योंकि उन्होंने बाजुओं को काटा, कलम किया, इसलिए वो उनके करीब आ सके। वो फिर फरेब है, वो भी छुप कर काट रहे हैं, जिस तरह अली की शहादत सजदे में हो रही है उसी तरह मेरे बेटे को भी फरेब के ज़रिए, धोखा देकर जो है वो मारा जा रहा है, बाकायदा उसका मुकाबला नहीं किया जा रहा। तो मुकाबला न करना खुद इस बात की अलामत है कि वो शिकस्त खा चुके हैं, इसीलिए वो ये काम अंजाम दे रहे हैं। बस इस अंदाज से आपने देखा कि कितने अपने किरदार के ज़रिए इन बीवियों ने करबला के मशाल को, जो पैगाम का जो नूर है, उसको हम तक पहुंचाया है। अल्लाह करे कि हम भी अपने किरदार के ज़रिए, अपने रफ्तार के ज़रिए और अपने तमाम तरीक़ा और सलीक़ा ज़िंदगी के ज़रिए इंशाअल्लाह अपने इमाम वक्त को अपने से राज़ी और खुशनूद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने हमें ये तौफीक दी है कि हम इन अजीम ख़वातीन के मुतालिक गौर फिक्र करें, उनकी सीरत को स्टडी करें जिन्होंने इनकलाब अजीम करबला में बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा उनका किरदार और उनका अमल दरकार था। एक और बीबी जिनका आज हम तस्करा करना चाहेंगे ख़वातीन करबला में से, वो हैं फ़ातिमा बिनत हसन। यकीनन आप सुनते रहते हैं कि क़याम आशूरा के बाद, असर आशूर के बाद असीरान करबला का काफ़िला मुख्तलिफ़ शहरों की तरफ ले जाया गया, और जनाबे उम्मुल मसाइब ज़ैनबे कुबरा सैयदतुल उसरा, असीरों की सैयदा बनकर उनके साथ चली। लेकिन शायद हमें बहुत ज़्यादा मारिफत हासिल ना हो, हमारी आगाही थोड़ी कम हो, हमें मालूम ना हो कि इन असीरों में ज़ैनब जैसी हस्ती के अलावा और कौन सी अजीम अजीम हस्तियाँ मौजूद थी। आज आपको मैं जिन हस्ती के मुतालिक बताऊंगी, आप यकीनन इस मारिफत के बाद आपकी बुका, आपकी गिरिया और आपकी उस मोहब्बत और इश्क और असीराने करबला की मजलूमियत में और ज़्यादा इजाफा होगा। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की अजमत का अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्सियत इतनी अजीम थी, इतनी मेहरबान थी, इतना इल्म था, इतनी इस्मत थी इसमें, और उसके साथ ऐसा किया, तो मजलूमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए तमाम कामों में शर्त अव्वल मारिफत है। काश हमारी सारी अज़ादारियाँ मारिफत व इश्क से लबरेज़ हो, कि मजलिस के बाद जब हम आए तो हमारी नमाजों में, हमारी इबादतों में, हमारी दुआओं में और ज़्यादा खुजू और खुशू, हमारे सजदे और ज़्यादा तुलानी हो जाए। तो जो बीबी जो मैंने आपको इब्तिदा में बताया, वो है फातिमा बिनते हसन। वो कौन है? कहते हैं वो शजरा तय्यबा, जो शजरा इस्मत है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम है, जो पंजतन है, उसकी एक शाख है। वो इस्मत की शह रग है। किस एतबार से? इस एतबार से कि कोई भी शायद हस्ती इस हद तक मासूमीन से उसका ताल्लुक नहीं होगा जितना इस अजीम हस्ती का है। और ये हस्ती करबला में उन तमाम मसाइब में शरीक थी और बहुत ज़्यादा मज़लूम। और आपके आपके सामने मज़लूमियत हम जाहिर करेंगे। कौन है फातिमा बिनत हसन? नंबर वन, वो हस्ती है जिनके दादा अली हैं, मासूम इमाम, अव्वलीन मासूम, अव्वलीन मज़लूम, जिनकी दादी मासूमे कौनैन फ़ातिमतुज़्ज़हरा हैं, जिनके वालिद बाबा जो हैं वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, मासूम इमाम, जिनके शोहर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हैं जो कि मासूम इमाम हैं, जिनके बेटे मासूम इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम हैं, और जिनके चचा मासूम इमाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। कितनी अजीब बात है। यानी चार पांच मासूमीन के हमरा है ये हस्ती, जहरा, अली, हसन, हुसैन, सज्जाद, बाकर, छह मासूमीन इस बीबी के हमरा है। यानी बिनते इमाम है, जोजे इमाम है, उम्मे इमाम है। हर एतबार से कितना दुरूद, कितना सलाम हम इस मजलूमा और इस असीरे करबला पर भेजें, जो कि अलवी, हाशमी, अजमत और साहिब इफ़त, शरफ, और उनके फजाइल हम कैसे बयान करें? आप खुद बताएं, कैसे हम बयान कर सकते हैं? तो चलिए चलते हैं उनके फजाइल को सुनने के लिए उनके बेटे के दर पर। बेटे भी तो इमाम हैं, और इनकी सबसे बड़ी मजलूमियत तो यही है कि आपने करबला में अपने शोहर को किस आलम में देखा? कभी हमने इस पर गिरिया किया है? जनाबे फातिमा बिनत हसन अपने शोहर को, यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को उस मजलूमियत में देख रही है कि इमाम है, वक्त के इमाम है, इल्म और अमल से लबरेज और नूरानी, लेकिन कितनी मजबूरियां हैं। और दूसरा ये कि बेटे के मुतालिक इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, 4 साला मासूम बेटा भूख प्यास से तड़प रहा है, नंबर वन। नंबर टू, फिर खुद नामहरमों की निगाहों से बचने के लिए एक चादर के टुकड़े के लिए तरस रही है। क्या वाकई दिल गिरिया नहीं करता कि इतनी अजीम हस्ती? अच्छी हस्ती कौन है ये? अगर चाहती तो क्या से क्या हो जाता, लेकिन उन्हें मालूम था कि इन्नल्लाह, कि अल्लाह ने चाहा है, शाअ यराहुन्ना उसारा, कि अल्लाह ने चाहा कि ये असीर हो ताकि इस्लाम को इस अंदाज से तबलीग और इस्लाम की सही माना में हर जगह पैगाम रसानी हो सके। यानी ये मशीयत से इलाही थी, अल्लाह ने चाहा कि ऐसा हो, इस अंदाज से हो। یعنی اس انداز سے جس طرح مظلومیت امام حسین کے متعلق ہے، امام حسین چاہتے تو اعجاز اپنے معجزے کے ذریعے، کرامت کے ذریعے بہت کچھ کرتے، لیکن پھر یہ دنیا کی کریشن کا، دنیا کی خلقت کا پھر کوئی مقصد ہی نہ رہتا. اگر ہر نبی اور ہر امام جو ہے وہ جہاں جب کوئی مشکل آ جائے فوراً اپنا معجزہ دکھائیں، تو پھر وہ امتحان کیسے پاس کرے؟ پھر اس دنیا میں جو آزادی ہے ظالم کو ظلم کرنے کی، اور یہاں پر ہر ایک کو، مظلوم کو صبر کرنے کی، وہ پھر عمل پیرا نہیں ہو سکتا. تو اس اعتبار سے میں کہہ رہی ہوں مشیت الہی، یہ خود ایک بہت ہی پیچیدہ ٹاپک ہے، مشیت اور علم الہی کو سمجھنا، کہ انشاءاللہ اگر ناظرین کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہے تو یقیناً وہ تحقیق کریں، اپنے اہل علم، اپنے علاقے کے اچھے باعمل عالموں سے رجوع کریں اور انسان